नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। टिम क्लिसोल्ट की पुस्तक मिस्टर चाइना एक संस्मरण है, जो 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के वर्षों में चीन में विदेशी निवेश के अनुभव को दर्ज करती है। क्लिसोल्ट वॉल स्ट्रीट के निवेशक जैक परकोवस्की के साथ चीन में लगभग $400 मिलियन लगाने वाले एक निवेश प्रयास का हिस्सा थे। आरंभिक धारणा यह थी कि पूंजी अनुबंध और पश्चिमी प्रबंधन पद्धतियां तेजी से फल दे सकती हैं। पुस्तक दिखाती है कि यह धारणा कितनी अधूरी थी। कारखानों की खोज, संयुक्त उपक्रमों में हिस्सेदारी, स्थानीय प्रबंधकों से संबंध और नियंत्रण बचाने की कोशिशों के बीच लेखक को ऐसे व्यावसायिक परिवेश का सामना करना पड़ता है जहां औपचारिक नियमों से अधिक महत्व व्यवहारिक सत्ता, स्थानीय रिश्तों और संस्थागत संकेतों का हो सकता है। यह केवल निवेश की असफलताओं का विवरण नहीं है, यह एक बाहरी व्यक्ति की बौद्धिक परिपक्वता की कथा भी है, जो चीन को पश्चिमी कसौटियों पर मापने के बजाय उसकी ऐतिहासिक, सामाजिक और व्यावसायिक तर्क पद्धति को समझना सीखता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पश्चिमी निवेश मॉडल की सीमाएं और चीन की अलग कारोबारी तर्क पद्धति। पुस्तक का केंद्रीय सबक यह है कि सफल निवेश का अर्थ केवल सही कंपनी चुनना, धन लगाना और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर लेना नहीं है। क्लिसोल्ट के अनुभव में विदेशी निवेशकों ने अक्सर यह मान लिया कि शेयर स्वामित्व, निदेशक मंडल और अनुबंध उन्हें वैसा ही नियंत्रण देंगे जैसा अमेरिका या ब्रिटेन में मिल सकता है। चीन के तत्कालीन संक्रमणकालीन वातावरण में यह अनुमान भरोसेमंद नहीं था। राज्य, स्थानीय प्रशासन, पुराने मालिक, कर्मचारियों और प्रबंधकों के हित एक ही उद्यम के भीतर अलग दिशाओं में काम कर सकते थे, इसलिए कागज पर स्पष्ट दिखने वाली हिस्सेदारी भी व्यवहार में कमजोर सिद्ध हो सकती थी। लेखक चीन को नियमहीन जगह के रूप में सरलता से प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि बताते हैं कि वहां नियमों की कार्यप्रणाली, अधिकार की वैधता और विवाद सुलझाने के तरीके अलग संदर्भों में काम करते हैं। विदेशी पक्ष यदि केवल अपनी परिचित कानूनी भाषा पर निर्भर रहे तो वह वास्तविक निर्णय केंद्रों को देख ही नहीं पाएगा। यह विचार आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोगी है। किसी बाजार में प्रवेश से पहले निवेशक को पूछना चाहिए कि निर्णय कौन करता है, उसकी जवाबदेही किसके प्रति है और औपचारिक अधिकार को लागू कराने की व्यावहारिक क्षमता किसके पास है। दूसरा, संयुक्त उपक्रमों में स्वामित्व, नियंत्रण और कंपनी चौप का व्यावहारिक महत्व। मिस्टर चाइना संयुक्त उपक्रम की उस बुनियादी विडंबना को सामने लाती है जिसमें विदेशी निवेशक पूंजी और तकनीक दे सकता है, पर रोजमर्रा का नियंत्रण स्थानीय पक्ष के हाथ में बना रह सकता है। पुस्तक में कंपनी की आधिकारिक मुहर, जिसे चौप कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रतीक है। पश्चिमी कारोबारी संस्कृति में हस्ताक्षर, बोर्ड के प्रस्ताव और दर्ज अनुबंध अधिकार के प्रमुख संकेत माने जाते हैं। क्लिसोल्ट के अनुभव में चौप का कब्जा भुगतान, समझौते और प्रशासनिक कार्यवाही जैसे मामलों में निर्णायक व्यावहारिक शक्ति दे सकता था। इसका अर्थ यह नहीं कि मुहर हर कानूनी प्रश्न का एकमात्र उत्तर थी। इसका अर्थ यह है कि नियंत्रण को केवल स्वामित्व प्रतिशत से नहीं समझा जा सकता। बैंक खाते, दस्तावेज, नियुक्तियां, आपूर्ति श्रृंखला, ग्राहक संबंध और स्थानीय सरकारी संपर्क सभी नियंत्रण के अलग स्रोत हैं। पुस्तक की उपयोगी चेतावनी यह है कि निवेश से पहले शासन व्यवस्था का डिजाइन उतना ही जरूरी है जितना मूल्यांकन, किसके पास किन दस्तावेजों की पहुंच होगी, कौन वित्तीय निर्णय मंजूर करेगा और विवाद की स्थिति में संचालन कैसे जारी रहेगा। ऐसे प्रश्न बाद के संकट में नहीं, सौदे से पहले तय होने चाहिए। लेखक का अनुभव बताता है कि नियंत्रण की अनदेखी लाभ के अनुमान को भी अर्थहीन बना सकती है। तीसरा, रिश्ते, स्थानीय सत्ता और अनौपचारिक संस्थाओं को समझने की जरूरत। क्लिसोल्ट की कथा में कारोबार किसी निर्जीव बाजार में नहीं होता, वह स्थानीय इतिहास, प्रशासनिक हितों, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और लंबे समय से बने रिश्तों के भीतर होता है। विदेशी निवेशक अक्सर दक्षता, कीमत और उत्पादन क्षमता के आधार पर अवसर का आकलन करना चाहता है, पर किसी चीनी उद्यम की वास्तविक क्षमता यह भी तय कर सकती है कि उसके प्रबंधक स्थानीय अधिकारियों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और पूर्व मालिकों के साथ कैसे जुड़े हैं। इन संबंधों को केवल भ्रष्टाचार या निजी पक्षपात कहकर खारिज करना पुस्तक के संकेत को कम कर देगा। लेखक का व्यापक बिंदु यह है कि जहां औपचारिक संस्थाएं विकसित हो रही हों या उनका प्रयोग संदर्भ पर निर्भर हो, वहां भरोसा और प्रभाव अक्सर व्यक्तिगत नेटवर्कों से संचालित होते हैं। यही नेटवर्क सहयोग को संभव बना सकते हैं, पर विदेशी साझेदार को बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए पुस्तक रिश्ते बनाने को सतही मेलजोल नहीं मानती। इसके लिए समय, भाषा, स्थानीय उपस्थिति और निरंतर संवाद चाहिए। साथ ही यह चेतावनी भी बनी रहती है कि संबंध उचित जांच और स्पष्ट नियंत्रण का विकल्प नहीं है। व्यावहारिक समझ यह है कि औपचारिक अनुबंध और अनौपचारिक भरोसा दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। एक की उपेक्षा दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकती। चौथा, विफल निवेशों से उबरने में अनुकूलन, धैर्य और प्रत्यक्ष उपस्थिति पुस्तक की विशिष्टता केवल इस बात में नहीं है कि निवेशों में क्या गलत हुआ, बल्कि इसमें है कि नुकसान के बाद टीम ने अपनी धारणाओं को कैसे बदला। कई व्यावसायिक कथाएं आरंभिक योजना को दूरदर्शी और अंत को अनिवार्य सफलता की तरह पेश करती हैं। मिस्टर चाइना, इसके विपरीत, गलत आकलन टूटे भरोसे और नियंत्रण संबंधी संकटों को सीखने की सामग्री बनाती है। क्लिसोल्ट का अनुभव बताता है कि दूर से निगरानी करना पर्याप्त नहीं था। जिन उद्यमों में धन लगाया गया था वहां प्रत्यक्ष उपस्थिति और स्थानीय वास्तविकताओं की लगातार जांच आवश्यक थी। समस्या सामने आने पर केवल कानूनी दावा करना अक्सर धीमा या अपर्याप्त उपाय हो सकता था। संचालन को बचाने के लिए बातचीत, स्थानीय सहयोग, विवरणों पर ध्यान और परिस्थिति के अनुरूप रणनीति चाहिए थी। यहां अनुकूलन का मतलब अपने मानकों को त्याग देना नहीं है। इसका मतलब है यह पहचानना कि कौन से सिद्धांत अनिवार्य हैं और कौन सी प्रक्रियाएं संदर्भ के अनुसार बदली जा सकती हैं। पुस्तक निवेशकों को धैर्य का ठोस अर्थ देती है। धैर्य निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि निरंतर निरीक्षण, संबंधों में निवेश और असुविधाजनक तथ्यों के आधार पर निर्णय बदलने की क्षमता है। यह सबक सीमा पार साझेदारियों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। अंत में, चीन को बदलने की आकांक्षा से चीन से सीखने तक लेखक की परिपक्वता। उपशीर्षक में आने वाली परिपक्वता की कथा पुस्तक के भावनात्मक और बौद्धिक ढांचे को समझने की कुंजी है। क्लिसोल्ट आरंभ में उस पश्चिमी आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें चीन को आधुनिक बनाने, व्यवस्थित करने या बेहतर कारोबारी तरीकों से सुधारने की कल्पना शामिल है। अनुभव धीरे धीरे इस दृष्टि की सीमाएं खोलता है। चीन कोई खाली मंच नहीं था जहां बाहरी पूंजी अपनी व्यवस्था स्थापित कर दे। वह अपनी दीर्घ ऐतिहासिक स्मृति, सामाजिक संरचनाओं और बदलती आर्थिक महत्वाकांक्षाओं वाला देश था। लेखक का सीखना इसी एहसास में है कि समझ का आरंभ श्रेष्ठता के भाव से नहीं, जिज्ञासा और सम्मान से होता है। यह परिवर्तन पुस्तक को केवल चेतावनी देने वाली व्यावसायिक रचना से अधिक बनाता है। वह पाठक को सांस्कृतिक अंतर के रोमानीकरण से भी बचाती है। अलग सोच का अर्थ यह नहीं कि हर व्यवहार स्वीकार्य, अनुमानित या निवेश योग्य है, बल्कि अंतर को समझना बेहतर जांच, स्पष्ट अपेक्षाओं और अधिक विनम्र वार्ता की मांग करता है। इसीलिए संस्मरण का अंतिम प्रभाव निराशावादी नहीं है। यह बताता है कि विदेश में काम करने वाला व्यक्ति तब अधिक सक्षम बनता है जब वह अपने ढांचे को सार्वभौमिक सत्य मानना बंद कर देता है। निष्कर्ष में, मिस्टर चाइना उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो चीन में निवेश, विनिर्माण, निजी इक्विटी, संयुक्त उपक्रम या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझना चाहते हैं। यह चीन के समकालीन कानूनों, बाजार आंकड़ों या निवेश सलाह का विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य कालखंड चीन के आर्थिक खुलने के शुरुआती वर्षों से जुड़ा है। फिर भी पुस्तक का मूल्य उन स्थायी प्रश्नों में है जिन्हें यह तीखे ढंग से उठाती है। कागजी स्वामित्व और वास्तविक नियंत्रण में क्या अंतर है? स्थानीय संबंध किस तरह व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं? और बाहरी प्रबंधक अपने सांस्कृतिक अनुमान कहां गलत सिद्ध कर सकता है? प्रबंधकों और निवेशकों को इससे जांच प्रक्रिया, साझेदारी संरचना और संचालन नियंत्रण पर अधिक ठोस ढंग से सोचने की प्रेरणा मिल सकती है। चीन के सामान्य पाठकों को यह तेज आर्थिक परिवर्तन के दौर का एक प्रत्यक्ष पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा वृत्तांत देता है। इसकी सीमा भी इसी में है। यह पूरे चीन या हर चीनी व्यवसाय का अंतिम चित्र नहीं, बल्कि एक निवेश टीम के अनुभवों पर आधारित संस्मरण है। समान विषय की कई पुस्तकें सिद्धांत, बाजार पूर्वानुमान या सांस्कृतिक सूत्रों तक सीमित रहती हैं। क्लिसोल्ट की पुस्तक अलग इसलिए खड़ी होती है कि उसके विचार वास्तविक सौदों, गलतियों और सुधार के कठिन प्रयासों से निकलते हैं। लेखक न तो अपनी टीम को अचूक दिखाते हैं, न चीन को सरल रूढ़ियों में बांधते हैं। यही आत्मालोचन और प्रत्यक्ष अनुभव इसे उपयोगी, पठनीय और विचारोत्तेजक बनाते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं टिम क्लिसोल्ट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।